समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जो चाहा वो मिल जाना सफलता है और जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ हूँ मैं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट तन्वी खुराना। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और तन्वी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग जया, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, जया हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड लेट मी जस्ट गारंटी यू दैट दिस डे इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी वेरी special. Today is 12th of June and a Thursday. So let me just wish you all a very happy Thursday. You won't have this Thursday again. So make it a great one. Focus on the good and let the rest follow. This day should be a day of persistence and not inconsistence. So have a great Thursday and let's just begin our program with the news headlines.
जी, देश में अगले महीने से केवल वे लोग ही भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट पर ऐप पर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तत्काल टिकट निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से बुक कराने और यात्रियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।
भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है। नए बदलावों के तहत इस वर्ष 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार OTP सत्यापन अनिवार्य होगा। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग के समय उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर सत्यापन किया जाएगा। ये परिवर्तन तत्काल बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं ताकि इसका लाभ सही उपयोगकर्ताओं तक पहुंचे। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दो नई रेल परियोजनाओं से संपर्क सुविधा और वाणिज्य में सुधार होगा तथा स्थायित्व को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 6,405 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को कल मंजूरी दी। पहली परियोजना 133 किलोमीटर लंबी कोडरमा बरकाकाना रेलवे लाइन के दोहरीकरण से संबंधित है, जो झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरती है। दूसरी परियोजना 185 किलोमीटर लंबी बल्लारी चिक्कजाजुरू रेलवे लाइन का दोहरीकरण है, जो कर्नाटक के बल्लारी और चित्रदुर्ग जिलों तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरती है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोडरमा बरकाकाना परियोजना से 938 गांव के 15 लाख से अधिक लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा का लाभ मिलेगा।
कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा, काफी नई गाड़ियां चलाई जा सकती है और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो जिले हैं इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी।
The center has reduced the basic customs duty on crude edible oil, including crude sunflower, soybean and palm oils from 20% to 10%. This has resulted in the import duty differential between crude and refined edible oils from 8.75% to 19.25%. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that this move aims to reduce the landed cost and retail prices of edible oils, providing relief to consumers and helping to curb overall inflation. The reduced duty will also encourage domestic refining and ensure fair compensation for farmers. An advisory has been issued to edible oil associations and industry stakeholders to ensure that the full benefit of the reduced duty is passed on to consumers.
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाए जाने संबंधी तमाम दावे निराधार और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार यूपीआई के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कई ऑनलाइन रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सरकार बड़े यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने की योजना बना रही है। एमडीआर तत्क्षण भुगतान के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा कारोबारियों से लिया जाने वाला शुल्क है। सरकार एमडीआर शुल्क को 2020 में ही समाप्त कर चुकी है।
External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India-European Union Free Trade Agreement is feasible by the end of 2025. He said, India places a high priority to its relations with the European Union, the centerpiece of which is the Free Trade Agreement negotiations that are making very good progress. Speaking at the German Marshall Fund Forum in Brussels, Dr. Jaishankar expressed confidence that the year-end timeline set for the completion of the India-EU Free Trade Agreement seems feasible following his in-depth talks with EU officials this week. He also highlighted the strength of the two-way relationship that goes beyond trade to cover aspects of defense and security, mobility, talent flows and education. Dr. Jaishankar said that there is a complex equilibrium in the world as India and China have risen to power and these countries also happen to be neighbors. He said, apart from border issues, there are trade and economic issues as well. Dr. Jaishankar said that unsettled boundary disputes play a huge role in their relationship.
आयुर्वेद के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से तैयार डॉक्यूमेंट्री आयुर्वेद द डबल हेलिक्स ऑफ लाइफ की कल दिल्ली में स्क्रीनिंग की गई। इसका उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया। 1.5 घंटे की इस डॉक्यूमेंट्री में पुरानी बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद की भूमिका को दर्शाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़ी मिथकों को दूर करना और इसकी वैज्ञानिकता को प्रदर्शित करना है।
In Canada, 9 people, including 7 Indo-Canadians, have been arrested by the Peel Regional Police in the largest drug seizure of their history. The police seized 479 kilograms of cocaine worth nearly 300 crore rupees and 2 illegal loaded semi-automatic handguns. The smugglers were arrested from Ontario on 35 charges as they were part of a transnational organized criminal network trafficking illicit drugs into the Greater Toronto Area. India Meteorological Department has predicted a spell of severe heatwave conditions across Jammu and Kashmir over the next 3 days, with temperatures expected to remain unusually high and dry till tomorrow. Weather Department said that while the overall weather will stay hot and dry, severe heatwave conditions will persist at scattered locations across the region. Between 14th of June and 17th of June, brief spells of light rain and thunder showers are likely at isolated at scattered places, possibly accompanied by thunder and gusty winds. Moving on to the world of sports, in the FIH Hockey Pro League, Indian men's team will take on Argentina at the Wagner Hockey Stadium in Amstelveen, Netherlands this evening. The match will begin at 6:30 p.m. Indian Standard Time and we have more from our sports desk.
India is currently fourth in the points tally, having accumulated 15 points from 11 games. Today they will face Argentina again to take revenge of the defeat in yesterday's clash at the same venue. The men in blue went down narrowly by 3-4 after a spirited display on the field. For India, Harmanpreet Singh netted twice, while Abhishek added a third in the 42nd minute. However, Argentina's Lucio Mendes netted a goal in the 46th minute that created difference. Next we have from the ICC World Test Championship final, where South Africa were 43-4 against Australia at Stumps on day one at Lord's in London. Proteas skipper Themba Bavuma and David Beddingham will carry on the innings on day two after a power-packed bowling action on the opening day. After being invited to bat first, the defending champions Australia were bundled out on 212 with Webster's 72 runs and Stephen Smith's sensible innings of 66 runs. For South Africa, Kagiso Rabada picked up 5 wickets. Then came the Proteas, who faced early breakthrough as Mitchell Starc picked 2 wickets. A total of 14 wickets fell on an eventful day at Lord's. Akashwani will broadcast ball by ball commentary of this match alternatively in Hindi and English. It can be heard on Indraprastha and other channels from 2:55 p.m. till the end of the match. Chirag Joy, Sports Desk.
India has undergone a decade of remarkable transformation driven by the principles of Seva, Sushasan and Garib Kalyan. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 11 years across key sectors. And today, we focus on Nari Shakti, women as drivers of economic change.
Over the last decade, India has witnessed a silent economic revolution, one led by its women. From self-help groups in villages to entrepreneurs in cities, women are no longer just participants in the economy. They are the powerful drivers of change. Of the 52.5 crore loans disbursed under the Pradhan Mantri Mudra Yojana, nearly 68% have been given to women, helping them start small businesses, expand enterprises and achieve financial independence. While under the Stand Up India scheme, over 2.7 lakh loans have been sanctioned to promote entrepreneurship, with nearly 83% going to women. At the grassroots level, the Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission, has mobilized over 10 crore rural women into nearly 91 lakhs self-help groups SHG. The Lakh Badi Didi initiative has enabled over 1.48 crore SHG members to earn a minimum annual income of rupees 1 lakh or more. The government has also institutionalized support through Mission Shakti, which combines safety with empowerment. From space missions to grassroots governance, from kitchens to boardrooms, Nari Shakti is marching ahead, stronger, freer and more determined than ever. Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
Vikasit Bharat ka Amrit Kaal. Seva, Sushasan, Garib Kalyan ke 11 saal.
Aur ab ruk karte hain Metro News ka. Sabse pehle jante hain Chennai ka haal Tanvi se.
Let's begin with Chennai. The Central University of Tamil Nadu, CUTN, Thiruvarur, has launched a pioneering initiative that leverages artificial intelligence to transform faculty members' research work into multilingual podcasts. The AI-driven podcast is designed in a discussion format that captures the essence of the faculty's research work. This innovative step is aimed at bridging the gap between high-level scholarly work and the broader public, ushering in a new era of accessible, inclusive and engaging educational content. Marking a significant milestone in the integration of technology within higher education, CUTN is among the first universities in India to use AI for converting faculty research work into audio content. And moving towards Bangalore, Southwestern Railways, with headquarters in Hubli, is taking steps to enhance passenger experience in its railway stations. New automatic ticket vending machines, Marg Darshak digital map and navigation system are introduced in the railway stations. Larger parking facility, mobile accessories kiosk and air-conditioned multi-cuisine restaurant in Bangalore and Mysuru stations will be a reality soon. The Southwestern Railway zone has recorded total gross revenue of 780 crore rupees in the previous financial year. It achieved a 36.91% surge in freight revenue, a 33% increase in ticket checking revenue, and 11.66% rise in parcel revenue. The goods transactions through the online payment system was around 103 crore rupees, achieving 100% digital payments. And about Hyderabad, Telangana government has allocated portfolios to the three newly inducted ministers. The orders were issued after Chief Minister A. Revanthareddy returned from New Delhi. G. Vivek has been allocated the labour, employment training and factories and mining, while V. Srihari has been allocated the animal husbandry, dairy development and fisheries and sports and youth affairs. A. Lakshman Kumar has been entrusted with the crucial portfolios of scheduled caste development, tribal welfare, minorities welfare and empowerment of persons with disabilities. Now, let me ask Jaya about Delhi, Mumbai and Kolkata city updates.
Ji, ab samay hai Rashtriya Rajdhani Delhi ke samacharon ka. Pradhanmantri Narendra Modi ne kal Rashtriya Rajdhani mein Delhi Bhajpa ke sansadon, vidhayakon aur anya netaon ke saath baatcheet ki. Social media post mein Shri Modi ne kaha ki baithak ke dauran unhone Delhi ke logon ka jeevan star behtar banane ke tareekon par vyapak charcha ki. Is avsar par Delhi ki Mukhyamantri Rekha Gupta bhi maujood thi. राजधानी में मानसून के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कल दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जहां विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान आगामी मानसून से पहले बाढ़ और जलभराव से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2025 भी जारी किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने मानसून से पहले सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर एक्शन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। अब चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने कल राज्य सचिवालय में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद संगम महुली, सतारा में ऐतिहासिक राजघाट क्षेत्र और अजिंक्य तारा किले के लिए एक व्यापक पुनर्विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत प्रमुख ऐतिहासिक मंदिरों काशी विश्वेश्वर, संगमेश्वर और रामेश्वरम के साथ साथ महारानी ताराबाई, महारानी येसुबाई और छत्रपति शाहू महाराज प्रथम के समाधि स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने यातायात की भीड़भाड़ को कम करने और स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना को संशोधित करने का भी फैसला किया है। सुरंग का निकास बिंदु अब ठाणे के मनपाड़ा क्षेत्र में मुल्लाबाग के बजाय सत्यशंकर दीवार तक बढ़ाया जाएगा। यह बदलाव निवासियों द्वारा सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और नियोजन से संबंधित मुद्दों को उठाने के बाद किया गया है। अब देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा के अनुसार कल भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली गई। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान मंडप में लाकर उन्हें स्नान कराने के बाद मंदिर को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। हालांकि इस दौरान भगवान जगन्नाथ की दैनिक पूजा अर्चना यथावत जारी रहेगी। रथ यात्रा से पहले भक्तों को फिर से राजसी पोशाक में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने को मिलेंगे। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर जया और तन्वी के साथ। और अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। दिल्ली में आज दिन में तेज हवाएं चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का भी अनुमान है। शहर में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा या गरज के साथ तूफान की भी आशंका है। अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं तन्वी से।
Chennai is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 26 degrees and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with heavy rain. The minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover somewhere between a minimum of 22 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius. And now we are moving towards the importance of this day. What all events happened on this particular day, that is 12th of June. So let's begin.
हाँ, 1665 में आज ही के दिन न्यू एम्स्टर्डम कानूनी तौर पर ब्रिटेन का हिस्सा बना और यॉर्क के ड्यूक के नाम पर इसका नाम न्यूयॉर्क रखा गया।
In 1952, the J&K Constituent Assembly voted to abolish the hereditary monarchy and elected a head of state, that is, Sardar-e-Riyasat, instead. And in 1964, Nelson Mandela was sentenced to life in prison in South Africa for his involvement in the Rivonia trial.
1991 में आज ही के दिन बोरिस येल्सिन तत्कालीन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने।
In the year 1990, Indian National Satellite INSAT-1D launched. This is an operational multi-purpose communication and meteorology satellite. It is still in service and it was launched by US Delta Launch Vehicle, Kennedy Space Center in Florida, USA.
1994 में दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट विमान बोइंग 777 ने पहली उड़ान भरी थी।
In the year 2000, the government of India appointed S.K. Mahajan of Delhi High Court as the chairman of the one-man tribunal to adjudicate whether or not there was sufficient cause for declaring LTTE as unlawful.
और आज ही के दिन सीमा मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश की वार्ता शुरू हुई थी। वहीं 2016 में साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था।
And today is a special day again because today is World Day Against Child Labour. And on this day, it is observed globally. This day highlights the grave issue of child exploitation and mobilize efforts to eradicate it. The theme of this year is progress is clear, but there's more to do. Let's speed up efforts. So Jaya, what do you have to say about it? Because of course, we see that children working, they are underage and they are still working under different conditions, which is not good for any country's progress.
जी बिल्कुल तन्वी, काम छोटा हो या बड़ा मेहनत तो लगती है और बच्चे हैं, बच्चों को अभी काम करने के लिए ना दिया जाए तो बेहतर है। और यह दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके, ना कि काम के लिए।
Absolutely. We all should be aware about child labor. It is not legal because they are underage. And if you see any child working under 18, then you can also report on this.
Bilkul.
Moving towards the people who have left their mark on this planet, either they have taken birth on this special day or they have left for their heavenly abode on this special day. Let's begin.
हाँ, आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है सी नारायण रेड्डी की। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि थे। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। वे 5 दशकों से भी अधिक समय तक काव्य रचना में लगे रहे। अब तक उनकी 40 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। सी नारायण रेड्डी ने फिल्मी जगत में भी काफी नाम कमाया है। साल 1962 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाना लिखना शुरू कर दिया था। पहले फिल्म मिली गुले बकावली का था। इस फिल्म के साथ वे भी मशहूर हो गए। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत।
सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम साहिब गारो, भले शोक गावचारा, भले शोक गावचारा, सलाम अलैकुम,
सलाम अलैकुम, पसंद तू की निशाते सी दिल खुशी से ये गावचाने, दिल खुशी से ये गावचाने, अस्सलाम।
Today we are remembering Dinanath Gopal Tendulkar, an Indian writer and documentary filmmaker. He is most well known as the author of the 8-volume biography of Mahatma Gandhi titled Mahatma, Life of Mohandas Karamchand Gandhi. He was also a close associate of Vitthal Bhai Zaveri and collaborated for the documentary film Mahatma, Life of Gandhi 1869-1948. He was awarded the Padma Bhushan, the third highest civilian honor in the Republic of India, decoration by the then President of India, Dr. Rajendra Prasad. He refused the award and asked for a watch instead, and he also got a watch. And he was also a documentary filmmaker who had trained under Sergei Eisenstein in Moscow, and he and his fellow European trained filmmakers P.V. Pathy and K.S. Hirlekar are considered to be the pioneers of documentary filmmaking in India.
आज ही पुण्यतिथि है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की। लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, अभिनेता, कथाकार और पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार और गायक की। वे दूरदर्शन से इसकी स्थापना के समय से ही जुड़े रहे थे। पीएल देशपांडे को पुल देशपांडे के नाम से भी जाना जाता था। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था। उन्हें 1966 में पद्मश्री और 1990 में पद्म भूषण सहित साहित्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, महाराष्ट्र भूषण सम्मान, कालिदास सम्मान आदि से नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनकी पहली फिल्म कुबेर का ये मराठी गीत।
कृष्ण वदन मद सदा जा 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 जाऊने सांग मुकुंदा, जा 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 कटि जाऊने सांग मुकुंदा, प्रिय दरि मदला वर्ण सावला।
And today is the birth anniversary of Anne Frank, a German-born Jewish girl who gained worldwide fame posthumously for keeping a diary documenting her life in hiding during the German occupation of the Netherlands. I'm sure everyone has heard the name Anne Frank and her diary. So they were, of course, hiding. The entire family was in hiding. She was 4 and a half in 1934 when her entire family moved to Amsterdam in the Netherlands after Adolf Hitler and the Nazi Party gained control over Germany. And the entire family except the father, Otto Frank, was arrested. The Franks were transported to concentration camps, and on 1st of November 1944, Anne Frank and her sister Margot were transferred to Auschwitz, to Bergen-Belsen concentration camp, where they died, presumably of typhus, a few months later. So Frank Otto, the only Holocaust survivor of the Frank family, returned to Amsterdam after World War II to find that Anne's diary had been saved. And moved by his daughter's repeated wishes to be an author, Otto Frank published her diary in 1947. So let's hear a small interview of Otto Frank talking about the discovery of Anne's diary.
I knew that Anna wrote a diary. She spoke about her diary. She left her diary with me at night in a briefcase next to my bed. I had promised her never to look in. I never did. When I returned, and after I had the news that my children would not come back, Miep gave me the diary, which had been saved by, I should say, a miracle.
आज ही संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज ने भी हमें अलविदा कह दिया था। योग और तंत्र के प्रकांड विद्वान डॉक्टर गोपीनाथ कविराज का जन्म 7 सितंबर 1887 को ढाका के एक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा ढाका, कोलकाता, जयपुर और वाराणसी में हुई। उन्हें पद्म विभूषण, महामहोपाध्याय और साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया था। और आज जयंती है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोकगीत भरतरी गायिका सूरजबाई खांडी की। उन्हें 1986 से 1987 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव का हिस्सा बनने का भी मौका मिला था। छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें दाऊ रामचंद्र देशमुख और स्वर्गीय देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। इन्हें सबसे पहले रतनपुर मेले में गायन का मौका मिला था। इसके बाद मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद ने उनके इस हुनर को पहचाना और उन्हें 1986 से 87 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव में हिस्सा बनने का मौका मिला। आइए सुनते हैं उनकी गायकी का एक अंश।
Today is the birthday of Felipe Coutinho, a Brazilian footballer, and he plays as an attacking midfielder or left winger for Campeonato Brasileiro Série, a club Vasco da Gama, on loan from Premier League club Aston Villa. He's known for his combination of vision, passing, dribbling and ability to conjure curling long-range shots. So when we talk about football, there comes a song in our head, and that is Waka Waka.
You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, this time for Africa.
अगला स्टेशन दिल्ली हार्ट INA है।
ये आवाज सुनी आपने? अगर आप भी मेट्रो शहर में रहते हैं तो अब तक ये समझ ही गए होंगे कि ये उसी मेट्रो की आवाज है जो भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हमें आरामदायक और सस्ती यात्रा देती है। और अब हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उन्हें इसके लिए एक धन्यवाद देना तो बनता है। अगर आप समझ गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध ई श्रीधरन की। आज इनका जन्मदिन है।
Absolutely. Metro Man, he was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2001, Padma Vibhushan in 2008, and many more awards. So, this is the birthday of E. Sridharan.
आज ही के दिन हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार गीतांजलि श्री का भी जन्मदिन है. ये हिंदी की पहली ऐसी लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला. आइए सुनते हैं उनकी किताब रेत समाधि का एक अंश उन्हीं की आवाज़ में.
एक कहानी अपने आप को कहेगी, मुकम्मल कहानी होगी और अधूरी भी, जैसा कहानियों का चलन है. दिलचस्प कहानी है, उसमें सरहद है और औरतें जो आती हैं जाती हैं आरम पार. औरत और सरहद का साथ हो तो खुद बखुद कहानी बन जाती है.
श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और तन्वी को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे. नमस्कार.